नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है, जानते हैं इस बुलेटिन में। अभिनेता कुणाल खेमू मंडगांव एक्सप्रेस के साथ बॉलीवुड जगत में अपनी दूसरी पारी बतौर निर्देशक शुरू करने जा रहे हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फरहान अख्तर और रितेश देशमुख ने खेमू द्वारा लिखित फिल्म का निर्माण किया है। खेमू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, गणपति बप्पा मोरिया, जैसे कि इसके नाम से सभी चीजें अच्छी शुरू होती हैं। इस घोषणा के लिए मैं इससे बेहतर दिन कोई और नहीं मानता। ये सब मेरे सोचने से शुरू हुआ, एक सपने की तरह मेरे मन में आया और मैंने इसे अपने लैपटॉप पे उतार दिया और अब ये कहानी हकीकत में बदलने जा रही है। रितेश और फरहान को दिल से धन्यवाद। एक्सेल मूवी ने मेरी कहानी और मुझ पर विश्वास किया। गणपति बप्पा और सबके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे और मेरी फिल्म मंडगांव एक्सप्रेस को। खेमू ने 2005 में फिल्म कलयुग में अपनी मुख्य भूमिका निभाने से पहले एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने तब से गोलमाल, गोलमाल 2, गो गोवा गॉन, कलंक के अलावा वेब सीरीज अभय में अभिनय किया है। दिल्ली क्राइम 2 के निर्देशक तनुज चोपड़ा का कहना है कि पुलिस के कामकाज की असलियत हमेशा अच्छी नहीं होती है। दरअसल वह नृशंस हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का काम करने वाली पुलिस बल की दुविधाओं के साथ की उनकी पारंपरिक छवि तथा पुलिस अत्याचारों से जुड़ी चिंताओं को पेश करना चाहते थे। एक ओर जहां नेटफ्लिक्स के शो दिल्ली क्राइम का पहला सीजन निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित था, तो वहीं दूसरे सीजन में बुजुर्गों से लूटपाट और हत्याओं के मामलों को उठाया गया। चोपड़ा ने कहा, ये सोच समझ कर लिया गया फैसला था। अपराध के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा, समुदायों पर छापा मारा जाता है, बहुत से लोगों को घेर लिया जाता है और अपराधियों को ढूंढने के मामले में प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन तकनीकों के बारे में बहुत बातचीत हुई और वास्तव में दुनिया भर में ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली क्राइम का दूसरा सीजन दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख नीरज कुमार की किताब खाकी फाइल्स के एक अध्याय से प्रेरित है। ये 1990 के दशक की शुरुआत में शहर को हिलाकर रख देने वाली सिलसिलेवार हत्याओं के बारे में है। शो अपराधी गिरोह कच्छा बनियान के रूप में देखे जाने वाले जयराम पेशा से जुड़े मामलों पर केंद्रित है। बिल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई को लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने नाराजगी जताई है। अब एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी बिल्किस मामले को लेकर दर्द झलका है। शबाना का कहना है कि अपराधियों की रिहाई से वो हैरान रह गईं। उन्हें लगता था कि जुल्म करने वालों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटेगा। एक्ट्रेस ने कहा कि लोगों में अभी ऐसे डरावने अपराध को लेकर जागरूकता नहीं विकसित हो पाई। शबाना ने कहा, 11 अपराधियों को छोड़ा जाता है, उनका स्वागत करके लड्डू खिलाए जाते हैं। ऐसा करके हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं हैं। हमारी सरकार जो नारी शक्ति पर बात करती है और उस दिन भी रही थी और उसके बाद हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हम सब बैठकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें। शबाना ने आगे कहा, मैं अपना डर बयां नहीं कर सकती हूं। जब हमारा पूरा देश निर्भया कांड में एक साथ आवाज उठा रहा था, सभी सड़कों पर उतर आए थे, तो बिल्किस मामले में चुप क्यों है। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल करके सामुदायिक तनाव पैदा करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बायकॉट ट्रेंड के लिए एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आमिर खान और करीना कपूर खान की हालिया फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें कौन और क्यों ट्रोल कर रहा है ये सब जानते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि एक ही तबका है जो बॉलीवुड को गाली दे रहा है, उस तबके का क्या एजेंडा है, सोशल मीडिया पर वो कौन लोग हैं ये सबको पता है, हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बॉलीवुड फिल्मों के बहिष्कार के ट्रेंड को लेकर बात करते हुए कहा, बॉलीवुड से लोगों को दिक्कत इतनी है कि बॉलीवुड ने हमेशा धर्म निरपेक्षता को बहुत बढ़ावा दिया और अपनाया। बॉलीवुड में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है। बॉलीवुड ने हमेशा अपने आप को भारत के सारे लोगों की इंडस्ट्री माना और प्रतिनिधित्व किया। आप फिल्म के क्रेडिट्स देख लीजिए, वहाँ आपको भारत के हर जाति धर्म भाषा समुदाय का प्रतिनिधित्व वहाँ मिलेगा, ये मेरा दावा है और बॉलीवुड के 100 साल के इतिहास में हमेशा से ऐसा रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत में एक जाति एक समुदाय एक रंग, जो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ एक हो, कोई अलगाव ना हो किसी किस्म का, उन लोगों को बॉलीवुड से बहुत दिक्कत है। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल ने कहा कि पिता के निधन की वजह से अन्विता दत्त की फिल्म काला के ऑडिशन के दौरान वे गहरी निराशा महसूस कर रहे थे। देश के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक इरफान खान का एक कैंसर के कारण 2020 में निधन हो गया था। नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे कार्यक्रम में सोमवार को बाबिल ने कहा कि वे काला की स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले ही इसमें काम करना चाहते थे, लेकिन वे निराश थे क्योंकि ऑडिशन के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।